थोड़ा सा सर्च करेंगे, थोड़ा सा इसको ही पढ़ेंगे, सारी चीज़ों को करेंगे, ठीक है। सो ये जो हमारा वर्ड है कंप्यूटर, ये कंप्यूटर जो वर्ड बना है वो किससे बना है? लैटिन लैंग्वेज से। ये बना है किससे? लैटिन लैंग्वेज से, ना कि ग्रीक से बना है, ना इटालियन से बना है, ये किससे बना है हमारा? लैटिन लैंग्वेज से बना है। इसको थोड़ा सा याद रखना। कंप्यूटर को आप सबको पता ही होगा कि कंप्यूटर किस लिए यूज़ होता है, कि जो हमारा टास्क है उसको थोड़ा सा ईजी बनाने के लिए यूज़ होता है। कंप्यूटेशनल टास्क हो गया, प्लस माइनस कैलकुलेशन, ETC, वीडियो देखना, अब तो कंप्यूटर हर चीज़ के लिए यूज़ होता है। डेटाबेस मैनेजमेंट, ETC, सब चीज़ों के लिए हम कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं मोर ऑर लेस, ठीक है। तो वो ऐसा चीज़ इसको जानने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसी स्टेटमेंट वो पूछेगा भी नहीं, लेकिन ये ज़रूर याद रखना ये जो वर्ड है किससे बना है? लैटिन लैंग्वेज से। इसकी कुछ फंक्शनिंग है, इसकी फंक्शनिंग देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर फंक्शनिंग पूछ लेगा कंप्यूटर की फंक्शनिंग क्या है, 5 स्टेटमेंट दे देगा और 5 में से बोलेगा 4 सही है, तो एक बताओ कौन सी गलत है, या फिर फंक्शनिंग दे देगा उसके बाद एक ब्लैंक दे देगा और बोलेगा कि इनमें से कौन सी फंक्शनिंग है, 4-5 ऑप्शन दे देगा, वहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो ज़रूर याद रखना हमारे कंप्यूटर की सिर्फ 4 फंक्शनिंग है, 4 टाइप के फंक्शन करता है। सबसे पहले इनपुट लेता है, इनपुट कैसे लेता है, हमारा कीबोर्ड हो गया, ले कमांड दे दी, इनपुट चला गया, ठीक है, माउस से क्लिक कर दिया, इनपुट चला गया, ये भी कमांड एक तरह की इनपुट जाती है। इनपुट जाने के बाद जाती है हमारे CPU के अंदर, CPU के बाद सबसे पहले हमारा कंप्यूटर क्या करता है, उसे प्रोसेस करता है, ठीक है। प्रोसेस करने के बाद फिर जो हमने कमांड दी होती है उसका वो रिजल्ट देता है, उसी को हमने आउटपुट हो गया, और एक चीज़ और करता है स्टोरेज, ठीक है, परमानेंटली स्टोर डाटा प्रोग्राम, परमानेंटली स्टोर करता है जब तक हम डिलीट ना करें, ठीक है। तो ये 4 फंक्शन होते हैं, इसको ज़रूर याद रखना। यहाँ पे मैंने शॉर्टकट भी बना रखा है, IPOS, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट स्टोरेज, ठीक है। ये लग रहा है बहुत ईजी, लेकिन जब MCQs करोगे तो यही अगर एक क्वेश्चन दे देंगे फंक्शनिंग के ऊपर तो यहाँ पे एक नंबर गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से, बहुत जैसे इंग्लिश है ना हमारा, सेम वैसे ही कंप्यूटर है, एकदम क्लोज से निकलेगा एकदम, और फिर एक नंबर ख़त्म, दो नंबर ख़त्म, और फिर एक साल ख़त्म, तो वो नहीं करना, ध्यान से एकदम। फंक्शनिंग क्या है हमारे कंप्यूटर की? 4 तरह की फंक्शनिंग है, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट स्टोरेज, IPOS, ये है हमारी फंक्शनिंग। स्टोरेज कैसे करता है? टेम्परेरी करता है? नहीं, ये परमानेंट स्टोरेज करता है, चाहे वो हार्ड डिस्क में करे, SSD कार्ड में करे, मेमोरी कार्ड में करे, परमानेंट है, एक्सेप्ट है कि हम उसे डिलीट ना कर दें, एक्सेप्शन है हम उसे डिलीट ना कर दें, प्रोवाइडेड से बोलते हैं वो, ठीक है। उसके बाद अब कुछ फीचर्स देख लेते हैं, कंप्यूटर के फीचर्स क्या क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी, क्या क्या फीचर्स हैं। देखो, कंप्यूटर बेसिकली हमारे टास्क को ईजी बनाने के लिए होता है, जो भी हम इसमें चाहे वो हमें प्लस माइनस करना हो, कैलकुलेशन करनी हो, कोई सम निकालना हो, कोई कमांड देनी हो, कोई प्रॉम्प्ट देनी हो, बहुत स्पीडली करता है। तो स्पीड भी इसका एक फीचर है, हमारे कंप्यूटर का जो फीचर है एक क्या है, स्पीड, ठीक है। उसके बाद जो भी आप काम देते हो इसको एक्यूरेसी से करता है, बहुत ही मिनिमल एरर होता है, ये भी क्या है, इसका फीचर है, ठीक है। ये जो एक्यूरेसी वाली चीज़ है, देखो यहाँ पे अगर स्टेटमेंट दे ले कि जो कंप्यूटर है रिस्पॉन्ड करता है किसके ऊपर, इनपुट के ऊपर रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। जो इनपुट इंस्ट्रक्शन हम देते हैं ना उसके ऊपर हमारा कंप्यूटर रिस्पॉन्ड करता है, और जो रिजल्ट देता है वो एक्यूरेट रिजल्ट देता है, जो कि इसका फीचर है, ठीक है। एक्यूरेसी इसका फंक्शन नहीं है, एक्यूरेसी इसका फीचर है, इसको याद रखना, ठीक है। ये फंक्शनिंग है, ये फीचर है, इन दोनों को क्लब मत करना, ठीक है। उसके बाद हमारी स्टोरेज कैपेसिटी, अब यहाँ ये भी हमारा एक फीचर है कि हमारा जो कंप्यूटर है वो स्टोरेज भी करता है, हार्ड डिस्क हो गया, SSD कार्ड हो गया, जिन पे पास कंप्यूटर होगा उनको तो ऑलरेडी पता होगा कि हमारा कंप्यूटर क्या क्या करता है, पेन ड्राइव वगैरह, ये सारा हमारे स्टोरेज उस डिवाइस के अंदर आता है। वर्सेलिटी, ये क्या चीज़ होती है, ये भी एक फीचर है हमारे कंप्यूटर का। वर्सेलिटी होता है कि 10 तरह के काम आप कर सकते हो, जैसे अभी ले लो कंप्यूटर से, एक तो माइक इससे कनेक्ट है, कैमरा इससे कनेक्ट है, ये लाइव क्लास इससे चल रही है, ये क्या है, वर्सेटैलिटी, कि बहुत सारा के जो काम है इससे कर सकता है। और अगर एक आम इंसान की बात करें तो वहीं पे यूट्यूब चल रहा है, वहीं पे गेमिंग चल रही है, वहीं पे एक म्यूज़िक चल रहा है, ये क्या है, वर्सेटैलिटी, ये क्या है, फीचर है, इसका फंक्शन नहीं है, फीचर है। फंक्शन तो सिर्फ 4 तरह के हैं। उसके बाद ऑटोमेशन, ऑटोमेशन मतलब ऑटोमेटिक बना देना काम को, अपने आप कर लेता है, इंस्ट्रक्शन प्रॉम्प्ट वगैरह कमांड दो अपने आप कर लेता है, और कंप्यूटर का यूज़ करके ही, पाइथन का यूज़ करते हैं, पाइथन का यूज़ करके ही वो जो आगे जो एडवांस चल रही है चीज़ें वो सारी होती है, सॉरी। उसके बाद ये जो हमारा इसका फीचर है, ये डिलीजेंसी, मतलब कि क्या, कि हमारा जो कंप्यूटर है इसको थकान नहीं होती, मोनोटोनस टास्क दो, एक जैसा काम देते रहो तो ये कभी नहीं बोलेगा यार मैं बोर हो गया। तो ये जो डिलीजेंटली काम करता है ये इसका क्या है, एक फीचर है। सिक्रेसी, जब तक कि कोई अटैक ना हो जाए तब तक ये सीक्रेट रखता है चीज़ों को, ये इसका फीचर है। ठीक है, यहाँ पे फंस जाओगे अगर स्टेटमेंट दे दी कि इनमें से क्या फीचर है, सिक्रेसी दे दिया तो तुम्हें लगेगा कि नहीं कंप्यूटर में सारी चीज़ सीक्रेट थोड़ी ना होती है, लेकिन एक्चुअल में ये इसका फीचर है। लॉगिन करते हो कंप्यूटर को तब एंटर करते हो, ठीक है, वायरस वगैरह अटैक वगैरह हो जाए वो अलग चीज़ है, पासवर्ड लीक हो जाए वो अलग चीज़ है, लेकिन सिक्रेसी इसका एक फीचर है, रिलायबल पार्टनर है। और प्लग एंड प्ले, जैसे कि गेम वगैरह हो गया, सॉफ्टवेयर वगैरह हो गया, हार्डवेयर हो गया, सीधा प्लग करो और प्ले करो, वो सारी चीज़ें क्या हैं, इसके फीचर्स हैं। इसको थोड़ा सा याद रखना, और इसके बाद एक बार दोबारा से एक बार रिपीट करता हूँ क्योंकि आप इसकी ऑडियो सुनेंगे मेरे को पता है। तो इसके फीचर्स में क्या क्या आता है, स्पीड, एक्यूरेसी, स्टोरेज, वर्सेटैलिटी, ऑटोमेशन, डिलीजेंस, सिक्रेसी, रिलायबिलिटी और प्लग एंड प्ले, ये सारे चीज़ें क्या हैं, ये इसके फीचर्स हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ तक का। इसके बाद आगे बढ़ने से पहले हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है, बेसिकली ये सारी बुक ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने तुम्हें बोला था कि इसे रीड करना, तो एक बार ज़रूर रीड करके आना नेक्स्ट उसमें हमारे लेक्चर में, लेकिन इसका ऑडियो ज़रूर सुनना, वो एकदम हाईली रिकमेंडेड है अगर इसमें तुम्हें 20+ स्कोर करना है। तो कुछ टर्म्स हैं उसको देख लेते हैं, क्योंकि कुछ मेरे यहाँ पे प्यारे बच्चे हैं जो थोड़े रूरल एरिया से हैं तो उनको वो शायद इन टर्म्स के बारे में पता नहीं होगा, और ये टर्म्स जो है कभी कभी आ जाती हैं, और कुछ बच्चे जो होते हैं वो थोड़ा घबरा जाते हैं यार ये क्या चीज़ है। तो हार्डवेयर क्या चीज़ होती है, देखो सिंपल चीज़ है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोले अगर हार्डवेयर क्या चीज़ है, कंप्यूटर का वो वाला पार्ट जिसको आप टच कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि कंप्यूटर का कभी आपने कंप्यूटर देखा तो होगा ही, और किसी ने नहीं देखा होगा तो मोबाइल में जो है, या मोबाइल ही देख लीजिए, अपना मोबाइल में प्लेट खोलो, उसके पीछे जिस जिस पार्ट को टच कर सकते हो सब उसका हार्डवेयर है, इंक्लूडिंग उसकी स्क्रीन वगैरह सब। ठीक है, तो ये सारे ऑल फिजिकल पार्ट, ये लिखा हुआ ही है कंप्यूटर के सारे जो फिजिकल पार्ट हैं वो हार्डवेयर में हैं। ठीक है, अगर यहाँ से ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोविंग इज़ नॉट कम इन टू द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर, और ऑप्शन दे देगा उसका स्क्रीन हो गया, उसका डिस्क हो गया, उसका कीबोर्ड हो गया, उसका सॉफ्टवेयर हो गया, तो ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर को आप टच नहीं कर सकते, सॉफ्टवेयर जो है प्ले होता है कंप्यूटर के अंदर, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा, सॉफ्टवेयर, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये डिस्प्ले हो गया, ये क्या है हमारा, इसमें इजी टफ सारी चीज़ कंप्लीट कवर करेंगे। ठीक है, तो ऐसे मत सोचना यार ये ऐसे इजी क्वेश्चन आएंगे, आते हैं, सारे क्वेश्चन टफ नहीं होते। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया हार्डवेयर। ठीक है, डिस्क वो चल रही है, वो उसके अंदर सीडी रोम हो गया, उसका ये कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, माइक वाइक सब हार्डवेयर है। ठीक है, जिसको टच कर सकते हो कंप्यूटर के अंदर वो सारी चीज़ हार्डवेयर है, तो एक बार देख लेना, स्क्रीन को टच कर सकते हो बिल्कुल कर सकते हैं हार्डवेयर, डिस्क को टच कर सकते हो बिल्कुल हार्डवेयर, कीबोर्ड बिल्कुल हार्डवेयर। ठीक है, उसके बाद दूसरा पार्ट आता है हमारा क्या, सॉफ्टवेयर क्या चीज़ होती है कंप्यूटर के अंदर जिसको हम टच नहीं कर सकते, वो सारी चीज़ सॉफ्टवेयर, या फिर कह लीजिए जिसके ऊपर जो है हमारा कंप्यूटर रन करता है, वो सारी चीज़ हमारी क्या है, सॉफ्टवेयर। आपकी विंडो सॉफ्टवेयर हो गई, आपका जो गूगल क्रोम है सॉफ्टवेयर हो गया, आपका वर्ड हो गया सॉफ्टवेयर, एक्सेल सॉफ्टवेयर, पाइथन सॉफ्टवेयर, ठीक है, क्रोम, सब चीज़ सॉफ्टवेयर है जिससे हमारा कंप्यूटर चलता है, जो स्क्रीन के अंदर दिखता है ना वो सारी चीज़ सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इंक्लूडिंग विंडो। ठीक है, ये हो गया, सॉफ्टवेयर टेल्स द हार्डवेयर व्हाट टू डू। ठीक है, ये तो ऑब्वियस सी चीज़ है, सॉफ्टवेयर की कमांड के ऊपर हार्डवेयर काम करता है। ठीक है, ये हो गया, ये दोनों लिंक्ड है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना, लेकिन ऐसा क्वेश्चन तो बनता नहीं है। डेटा क्या होता है, डेटा सुना तो बहुत बार है, होता क्या है, अनप्रोसेस्ड रो फैक्ट एंड फिगर। अनप्रोसेस्ड मतलब कि लेट्स से कि बहुत सारे डिटेल्स हैं, कोई प्रोसेस नहीं है, कोई उस डिटेल से आप कुछ पता नहीं लगा सकते। ठीक है, लेट्स से कि आप जितने बच्चों ने ज्वाइन कर रखा है, ठीक है, उन बच्चों का नाम हटा दो उसमें से। ठीक है, उन बच्चों का नाम हटा के सारे बच्चों की इन्फॉर्मेशन जो है एक तरफ इकट्ठी है, किसका एड्रेस कौन सा है कुछ नहीं पता है मेरे को। ठीक है, किसका नाम क्या है कुछ नहीं पता है मेरे को, लेकिन आप सबका मोबाइल नंबर वो सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या है, अनप्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन है, डेटा है। ठीक है, डेटा के बाद आता है इन्फॉर्मेशन क्या है, फिर इसी डेटा को किसी को मैं हायर करूँ, बोलूँ कि इनको है ना एक सेग्रीगेट लिस्ट बना दो एक्सेल के अंदर, एक्सेल क्या है हमारा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एक्सेल के अंदर एक लिस्ट बना दो उनके नाम के आगे फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर के आगे कौन सा बैच खरीद रखा है, कौन से बैच के बाद उनका जो है एक्सपायरेशन कब होने वाला है, कौन क्या रोल नंबर है, वो सारी चीज़ जो डेटा है उसको स्ट्रक्चर्ड वे में लगा दिया, तो वो क्या बन गई, इन्फॉर्मेशन बन गई। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस रखना डेटा और इन्फॉर्मेशन के बीच में क्या होता है। यहाँ से एक स्टेटमेंट आएगा और ये कन्फ्यूजिंग है थोड़ा सा कि डेटा क्या होता है और इन्फॉर्मेशन क्या होता है। डेटा और इन्फॉर्मेशन दोनों अगर ऑप्शन में दे रखा होगा वो कन्फ्यूज़ कर देगा। ठीक है, समझ आ गया ना, डेटा क्या होता है, अनप्रोसेस्ड, मतलब पता नहीं लगा सकते। इन्फॉर्मेशन वहाँ पे है, चीज़ें हैं, लेकिन पता नहीं लगा सकते कि क्या चीज़ किससे रिलेटेड है, वो डेटा है, अनप्रोसेस्ड है, रॉ एकदम। ठीक, कच्चा माल जिसे कहते हैं उसे डेटा बोल दिया। ठीक है, अब उसी को हमने एक तैयार करवा दिया एक्सेल शीट में कि सारे बच्चों का नाम एकदम सीरियल वाइज होना चाहिए, ए से चालू हो, जेड पे ख़त्म हो, उनका एड्रेस, उनका मोबाइल नंबर, सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब उससे क्या कर सकता हूँ, वो एक इन्फॉर्मेशन बन गई, वो जो डेटा था ना वो इन्फॉर्मेशन बन गई, वो प्रोसेस्ड हो गई है। वही चीज़ यहाँ पे लिख रखी है। इंस्ट्रक्शन क्या है कि आपने कमांड दी है, उसे इंस्ट्रक्शन कहते हैं। कंट्रोल F4 मतलब शटडाउन की कमांड है ना ये, इसे ये क्या है, इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, अब ऐसी वो बहुत सारी इंस्ट्रक्शन को क्लब कर दो, वो क्या बन जाएगी, प्रोग्राम। जैसे पाइथन, पाइथन क्या है, एक प्रोग्राम है। ठीक है, पाइथन में क्या होता है, काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शन एक साथ दे रखी होती है तो वो पूरा प्रोग्राम बन जाता है। ठीक है, समझ आ गया प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन में डिफरेंस क्या है। इंस्ट्रक्शन में सिर्फ एक दो कमांड रहती है, अब ये जो इंस्ट्रक्शन है खूब सारी इंस्ट्रक्शन दे दी किसी चीज़ में, ये एक प्रोग्राम बन गई। ठीक है, कि ऐसा करेंगे तो वैसा होगा, उसके बाद वो होगा, उसके बाद वो होगा, पूरा सेट ऑफ जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या बन गया, हमारा प्रोग्राम बन गया। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा याद रखना। एक बार दोबारा से इसको मैं रिवाइज करवा देता हूँ। हार्डवेयर क्या है, जिसको टच नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर क्या है, जिसको, सॉरी गलत वो बोल दिया, ऊपर नीचे बोल दिया। हार्डवेयर क्या है, कंप्यूटर में हार्डवेयर कौन सा पार्ट होता है, जिस चीज़ को आप टच कर सकते हैं। क्या माउस हार्डवेयर में आता है, बिल्कुल। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या है, जिसको टच नहीं कर सकते। एमएस वर्ल्ड सॉफ्टवेयर में आता है, बिल्कुल आता है, क्योंकि हम उसे टच नहीं कर सकते, कंप्यूटर के अंदर है। उसके बाद डेटा और इन्फॉर्मेशन में फ़र्क क्या है, डेटा क्या है, अनप्रोसेस्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड है, रॉ में है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन क्या है, उसी को हमने सेग्रीगेट कर दिया, रॉ में बना दिया, एक उसको यूजफुल चीज़ बना दी, वो बन गई इन्फॉर्मेशन। इंस्ट्रक्शन क्या है, एक दो कमांड है, खूब सारी कमांड है, खूब सारी इंस्ट्रक्शन है, वो क्या बन गई, हमारी प्रोग्राम बन गई, एग्जाम्पल पाइथन। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। उसके अब आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन टपकने के चांसेस है भैया, यहाँ से थोड़ा सा सीरियसली हो जाओ। ऊपर से अगर आएगा तो एक आधा आएगा, और नहीं भी आए तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन यहाँ से आने के चांसेस हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमें याद रखनी है, यहाँ देखो एक चीज़ थोड़ा सा याद रखना, किसके बाद कौन सा आया, सीक्वेंस थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, उस सीक्वेंस के बाद हमें उसका इन्वेंटर भी याद रखना है, और उसके अंदर कुछ स्पेशल चीज़ है, कोई फर्स्ट चीज़ है, कोई सेकंड चीज़ है, क्या करता है क्या नहीं करता, वो सारी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1602 में सबसे पहला जो इन्वेंशन हुआ था कंप्यूटर का, उसे क्या कहते हैं, अबेकस कहते हैं। किसने करा था, किस कंट्री ने करा था, चाइना ने करा था। ठीक है, वैसे हमें अबेकस का नाम सुन के लगता है कि यूएसए वगैरह की इन्वेंशन है, लेकिन ये किसकी है, हमारी चाइना की है। ये जो अबेकस था, जो 1602 में आया था, 1602 में आया था, ये फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस था। कौन सा था, मैकेनिकल था। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखना, इसकी वर्डिंग इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस था। किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता था, प्लस हो गया, माइनस हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, उसके लिए किया जाता था, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता था। ठीक है, अबेकस चाइना ने इन्वेंट करा था, क्या चीज़ थी, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस थी। ठीक है, उसके बाद सेकंड आया हमारा नेपियर बोन्स का। नेपियर बोन्स को इन्वेंट किसने करा, जॉन नेपियर ने, स्कॉटलैंड का था, 1617 के अंदर। ठीक है, करेक्टरिस्टिक में एज सच कुछ नहीं है ऐसा जानने के लिए, एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है इसकी एप्लीकेशन में, कि ये मल्टीप्लिकेशन करता है, और ये किस टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है, ये चीज़ यहाँ पे, यहाँ से एमसीक्यू आ सकता है कि जो जॉन नेपियर का इन्वेंशन है वो कौन सी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, वो है रेबडोलोजिया, रेबडोलोजिया। ठीक है, जॉन नेपियर 1670 के अंदर, स्कॉटलैंड का एक जो लड़का, उसने इन्वेंशन करा, उस इन्वेंशन का नाम था नेपियर्स बोन्स। नेपियर्स बोन्स कौन सी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड था, वो था रेबडोलोजिया पे बेस्ड। ठीक है, करता क्या था, ये मल्टीप्लिकेशन का टास्क करता था, थोड़ा सा अबेकस से एडवांस था। देखो सारी चीज़ एडवांस ही होती रहेगी, ऐसा तो नहीं है कि 1617 के बाद, 1642 के बाद जो इन्वेंशन आएगी वो उससे थोड़ी सी कम होगी, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता, क्योंकि चैट जीपीटी के बाद उसका नेक्स्ट वर्जन ही आता है, उससे पुराना ओल्ड वर्जन दोबारा आता नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा जॉन नेपियर। उसके बाद आ गया हमारा पास्कलाइन, 1642 में पास्कलाइन आया, फ्रांस के इन्वेंटर ब्लेस पास्कल ने उसको इन्वेंट करा। ये क्या चीज़ थी? ये थी फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन। अबेकस क्या थी? फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस, ये थी एडिंग मशीन। ठीक है, एडिशन सब्सट्रक्शन ये सारी चीज़ करती थी, ये ऐसे जितना जानने की ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ा याद रखना। रेबडोलोजिया किससे रिलेटेड है? जॉन नेपियर की इन्वेंशन से, नेपियर्स बोन। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना, कंप्यूटर ही है वैसे ये। उसके बाद आता है हमारा लैक्वार्ड लूम, 1801 में आया हमारा लैक्वार्ड लूम। लैक्वार्ड लूम को इन्वेंट करा किसने? जोसेफ मरी लैक्वार्ड, फ्रांस की थी। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ होता था ये लैक्वार्ड। वैसे ये लैक्वार्ड लूम का नाम सुनते ही टेक्सटाइल याद आता है, तो ऐसा जिसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जिन बच्चों को ये लैक्वार्ड की हिस्ट्री नहीं पता तो वो थोड़ा सा याद रखना है। लैक्वार्ड लूम क्या करती थी? टेक्सटाइल प्रोसेस को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया था, ईजी बना दिया था लैक्वार्ड लूम ने। ठीक है, फ्रांस के इन्वेंटर जोसेफ मैरी लैक्वार्ड ने इसको इन्वेंट करा था। ये क्या करता था? पंच्ड कार्ड फॉर सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, ये पंच्ड कार्ड का यूज़ करता था। अभी तक कोई मशीन नहीं बनी थी इससे पहले जो पंच कार्ड का यूज़ करती थी। पंच कार्ड क्या चीज़ होती है थोड़ा सा देखें, पंच्ड कार्ड ये चीज़ होती है, पंच्ड कार्ड देख लो, नहीं देखो तो ज़्यादा अच्छा है। पंच्ड कार्ड जैक्वार्ड लूम, ओके, आईसी टाइप की कुछ लग रही है, जैसे आईसी होती है ना अभी, वैसे टाइप की लग रही है पंच कार्ड लूम। और सबसे पहले कहाँ यूज़ होती थी? जैक्वार्ड लूम के अंदर यूज्ड पंच कार्ड लूम इन द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। पंच कार्ड कहाँ पे यूज़ होता था? जैक्वार्ड लूम के अंदर। जैक्वार्ड लूम को किसने इन्वेंट करा था? फ्रांस के एक इन्वेंटर जोसेफ जैक्वार्ड ने। कहाँ पे यूज़ होती थी? टेक्सटाइल में यूज़ होती थी। रेबडोलजिया, रेबडोलजिया किससे रिलेटेड है? नेपियर बोन की इन्वेंशन है, जॉन नेपियर स्कॉटलैंड वाला। ठीक है, रेबडोलजिया ये रहा, ठीक है, इसका नाम याद रखना, वैसे पंच कार्ड। उसके बाद नेक्स्ट आती है इन्वेंशन एनालिटिकल इंजन, 1837 में आया था। इसको इन्वेंट करा था किसने? चार्ल्स बेबेज ने। ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि चार्ल्स बेबेज का नाम बहुत फेमस है, फादर ऑफ कंप्यूटर ही बोलते हैं शायद चार्ल्स बेबेज को, और फादर ऑफ कंप्यूटर लंदन बता रखा है यहाँ पे, ठीक है, कंप्यूटर है लेकिन लंदन में था, ठीक है, चलो ठीक है। चार्ल्स बेबेज ने क्या इन्वेंट करा था? एनालिटिकल इंजन, ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि चार्ल्स बेबेज के साथ ऐसा कोई नाम सुनावा नहीं है, अबेकस दे देते तो वही लगा देते सारे लोग, ठीक है। तो चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन को जो है इन्वेंट करा था। ये क्या थी? फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था। मतलब क्या कि जनरल पर्पस के लिए यूज़ करने वाला कंप्यूटर, जनरल पर्पस कंप्यूटर, फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन सा था? एनालिटिकल इंजन, ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखना। स्टोरेज प्रोग्राम पैक्स यूज़ करता था, स्टोरेज प्रोग्राम इन द फॉर्म ऑफ पैक्स ऑल्सो कॉल्ड बैरल्स, छोड़ो इसको, ये ज़रूर याद रखना। जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन सा है? सबसे पहला हमारा एनालिटिकल इंजन। डेसिमल मशीन्स थी, इसको नहीं यूज़ इतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत, लेकिन ये थोड़ा सा याद रखना। फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन, फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन पास्कलाइन, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस अबेकस, ठीक है। रेबडोलजिया कहाँ यूज़ होता था? जॉन नेपियर की इन्वेंशन, नेपियर बोन के अंदर, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन टास्क वगैरह के लिए यूज़ होता था। टेक्सटाइल से कौन सा रिलेटेड है हमारा कंप्यूटर? जैक्वार्ड लूम, ठीक है, जैक्वार्ड लूम में पंच कार्ड यूज़ होता था। वैसे ही चार्ल्स बेबेज का एनालिटिकल इंजन जनरल पर्पस कंप्यूटर है फर्स्ट, ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखना, पैक्स उसमें यूज़ होता है। ये हो गया, इसके बाद और आगे आ जाओ, टेबुलेटिंग मशीन, ये बच्चों याद ही करना पड़ेगा, जो सारी फर्स्ट फर्स्ट चीज़ है ना, इसका एक वो बना लेना, शीट बना लेना और उस पर लिख लिख के याद कर लेना, ठीक है। टेबुलेटिंग मशीन आई उसके बाद अबेकस, ये एनालिटिकल इंजन के बाद, एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर, उसके बाद आया हमारा टेबुलेटिंग मशीन 1890 में, ठीक है। इन्वेंटर कौन था इसका? हर्मन हॉलेरिथ ने क्या करा था? टेबुलेटिंग मशीन को इन्वेंट करा था। हर्मन हॉलेरिथ ने क्या करा था? टेबुलेटिंग मशीन को इन्वेंट करा था 1819 के अंदर। इसमें भी पंच कार्ड यूज होते थे। पंच कार्ड कहाँ यूज होते थे इससे पहले? हमारा जैम लकवाड की मशीन के अंदर, अभी देखा था ना वो टेक्सटाइल मशीन में जो यूज होता था जैम लकवाड वाला, वहाँ पे पंच कार्ड यूज होते थे। लेकिन ये जो हरमन हॉलेरिथ की टेबुलेटिंग मशीन थी, ये फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन थी। ये वाला और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्यों? क्योंकि ये सेंसस 1890 के अंदर इसको यूज़ किया गया था। किसका? टेबुलेटिंग मशीन का। टेबुलेटिंग मशीन किससे रिलेटेड? हमारी हरमन हॉलेरिथ से, ठीक है। पंच कार्ड यूज़ होते थे, याद रखो नहीं रखो कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन ये ज़रूर याद रखना पहली ये मशीन थी इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन जो यूज़ हुई थी सेंसस के अंदर, टेबुलेटिंग मशीन, ठीक है। वन कार्ड एट अ टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद वर्ल्ड वॉर के अंदर कौन सी मशीन यूज़ हुई थी हमारी? मार्क वन। वर्ल्ड वॉर टू के अंदर जो यूज़ हुआ था कंप्यूटर, मार्क वन यूज़ हुआ था 1944 के अंदर। इन्वेंटर कौन था इसका? हॉवर्ड एकिन अमेरिकन था, ठीक है। हॉवर्ड एकिन अमेरिकन मार्क वन का इन्वेंट करा था इसने। कहाँ पे यूज़ हुई थी? वर्ल्ड वॉर टू के अंदर, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। इसके बाद ये चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है, फर्स्ट जनरल पर्पज़ कंप्यूटर किसने इन्वेंट करा था, किसी को याद है? देखो मैं टेक्स्ट वाला खोल देता हूँ, टेक्स्ट में करो तुम मैसेज, थोड़ा थोड़ा इंटरेक्शन भी होना चाहिए, नहीं तो फिर वो हो जाएगा, ठीक है। चार्ल्स बेबेज, वेरी गुड विनीत। और पंच कार्ड वाला क्या चीज़ था? फर्स्ट पंच कार्ड जो हमने देखा था वो क्या चीज़ थी बताओ? पंच कार्ड कहाँ यूज़ हुआ था, कौन सी इंडस्ट्री के अंदर? हाँ सुहानी का सही है, जैकवार्ड लूम, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है, ओके बोल सकते हो, माइक से भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद चलो इसको ख़त्म करके फिर थोड़ा सा वो रिकॉल करेंगे तब ज़्यादा अच्छे से होगा। वर्ल्ड वॉर टू के अंदर कौन सी मशीन का इन्वेंशन हुआ था? मार्क वन किसने करा था? हॉवर्ड एकिन ने करा था। उसके बाद फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? एनियक, 1946 में आया था। किसने करा था? एकार्ट और मैकेली ने। एकार्ट और मैकेली ने जिसका इन्वेंट करा था उसका क्या नाम है? एनियक। ये क्या चीज़ है? फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल मशीन थी हमारी कौन सी? टेबुलेटिंग मशीन। फर्स्ट जनरल पर्पज कंप्यूटर कौन सा था हमारा? ये वाला चार्ल्स बेबेज का एनालिटिकल मशीन। और फर्स्ट ये अबेकस क्या था? फर्स्ट क्या था? मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस था, मैकेनिकल एडिंग मशीन, पास्कलाइन। ये वाला थोड़ा सा याद रखना, एनियक किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? ये यूज़ होता है वेदर प्रिडिक्शन के लिए, मतलब ये जो है सुपर कंप्यूटर से वाला मेन फ्रेम कंप्यूटर में आता है एनियक वाला, फिर तो वेदर प्रिडिक्शन के लिए, एटॉमिक एनर्जी कैलकुलेशन के लिए, साइंटिफिक यूजेस के लिए जो सबसे पहले कंप्यूटर यूज होता है कौन सा? एनियक। किसने करा था? एकार्ट और मैकेली ने। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है, फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर था शायद ये वाला, इलेक्ट्रो मैकेनिकल मशीन थी, टेबुलेटिंग मशीन, ठीक है। अब चलते हैं आगे, इडसेक। यस सर, एनियक इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट में एनियक की फुल फॉर्म पूछी थी। ओह ठीक है, आगे आ जाएगी ये भी, क्योंकि ये एनियक आगे तक आता रहेगा। देखो देख लेते हैं, अब फुल फॉर्म पूछ लिए तो एनियक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, यहाँ पे दे नहीं रखा तो इन इसको हम वो ले लेते हैं, स्निप ले लेते हैं। ये हो गया, पता नहीं होता ना क्या चीज आएगी। ये हो गया एनियक, ठीक है, इसको थोड़ा सा ये फुल फॉर्म हो गई, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर एनियक। एनियक के बाद आ जाता है हमारा एडसेक, फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड स्टोरेज कैपेसिटी। कोई नहीं, थोड़ा सा याद रख लेना इसको भी, एडसेक। एडसेक किसने इन्वेंट करा था? जॉन वॉन ने, जॉन वॉन न्यूमैन, जॉन वॉन न्यूमैन ने इन्वेंट करा था एडसेक को। पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसमें स्टोरेज कैपेसिटी थी, इससे पहले में स्टोरेज कैपेसिटी नहीं थी। फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम वाज रन ऑन मशीन वाज एडसेक, पहला ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जिसपे जो मशीन के ऊपर रन हुआ एडसेक था। दो दो चीज़ें हैं। उसके बाद यूनिवैक आता है, सेम वही है एनिएक वाले। यूनिवैक शायद एनिएक का जो है मॉडिफिकेशन है, नेक्स्ट वर्जन होगा। फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, मतलब एबेकस था हमारा जनरल पर्पस कंप्यूटर, एबेकस का फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक, फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था हमारा यूनिवैक। सेम इन्वेंटर वही है। हाँ, एनालिटिक, वो फर्स्ट वाले का एनालिटिकल था गर्व, इस वाले का हमारा क्या है, एकार्ट और मैकाले है, ये एनिएक वाले ही हैं, सेम इसी का नेक्स्ट वर्जन होगा। उसके बाद हमारा आईबीएम वगैरह आ गया, पेरोल ऑयल रिफाइनरी के लिए यूज़ करने वाला, इसका तो कोई पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, इसको एक बार रिकॉल कर लें, ठीक है, इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो कन्फ्यूजिंग बहुत है। ठीक है, बताओ फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन कौन सी थी? फर्स्ट बिल्कुल, वेरी गुड रश्मि, पास्कलाइन, फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन। पैग किसके अंदर यूज होता है? पैग, बैरल, जिसको बैरल भी बोलते हैं, एनालिटिकल मशीन में, वेरी गुड। और रेबडोलजिया, ये वर्ड किस चीज के अंदर यूज हुआ था? नेपियस बोन, वेरी गुड। उसके बाद टेबुलेटिंग मशीन का यूज कहाँ पे हुआ था? टेबुलेटिंग मशीन क्या चीज थी, क्या उसमें वो चीज इंपॉर्टेंट थी? यूज कहाँ का? सेंसर्स में यूज हुआ था, वेरी गुड। एनिएक के इन्वेंटर कौन है? ठीक है, इससे आ जाएगा, मतलब टिक ही करना है वहां पे, एकॉर्ट और मैकले, मैकली। उसके बाद वर्ल्ड वॉर टू के अंदर कौन सी मशीन यूज हुई थी? मार्क वाली, मार्क वन। मार्क वन के इन्वेंटर हॉवर्ड, वेरी गुड। फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक मशीन, एनिएक की थी शायद, नहीं नहीं नहीं, ये थी यूनिवैक, ये वाली, ये वाली फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक मशीन। और पहली जनरल पर्पस मशीन कौन सी थी? एनालिटिकल। इन्वेंटर कौन था? ठीक है, ठीक है, बस इतना बहुत है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, इसको कल दोबारा रिवाइज कर लेंगे, जब चालू करेंगे ना एकदम 5-10 मिनट में सारी चीज़ रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि ये माइंड में बिठानी ज़रूरी है। जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पे स्विचिंग डिवाइस के बारे में पूछेगा, वैसे तीनों ही चीज़ इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जनरेशन में ऑपरेटिंग मशीन कौन सी थी, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था, या फिर वैक्यूम ट्यूब जो होती है कौन सी जनरेशन के अंदर यूज़ होती है, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन पूछता है इस वाले एरिए से। ठीक है, इससे पहले, फर्स्ट जनरेशन से पहले कोई बात नहीं, गूगल पे अलग दिए हुए, हम बुक को मानेंगे। ठीक है, कोई कुछ होगा तो हम बुक पे केस करेंगे। ठीक है, यहां देखते हैं, स्विचिंग डिवाइस, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन से पहले मशीन्स के अंदर इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो था स्विचिंग डिवाइस यूज होता था। ठीक है, इतना थोड़ा सा याद रखना, ये शायद मैंने उस टाइम पे कुछ करा था तब यहाँ पे लिखा था 2022 में। फर्स्ट जनरेशन से पहले स्विचिंग डिवाइस कौन सा यूज होता था हमारा? इलेक्ट्रोमैकेनिकल। ठीक है, ये थोड़ा सा दिमाग में रखना, उसके बाद आप चलते हैं फर्स्ट, ठीक है। जनरेशन तो पता है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, एंड फिफ्थ तक यहाँ पे बता रखा है, प्रेजेंट एंड बियॉन्ड का करके। अब एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट जनरेशन ईयर मत याद रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इतना नहीं याद रखना। फर्स्ट जनरेशन जो है उसके अंदर जो स्विचिंग डिवाइस था वो कौन सा यूज़ होता था, वैक्यूम ट्यूब। टास्क को स्विच करने के लिए शायद वो स्विचिंग डिवाइस यूज़ होता होगा, वैक्यूम ट्यूब यूज़ होता था। स्टोरेज डिवाइस था इसमें मैग्नेटिक ड्रम, ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था इसके अंदर, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इम्पॉर्टेंट है एक्चुअल में, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकता है कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कौन सी जनरेशन के अंदर यूज़ होता है, या फिर सेकंड जनरेशन के अंदर स्विचिंग डिवाइस कौन सा यूज़ होता है, ऐसे करके यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो वैसे करके हम देखेंगे एप्लीकेशंस, थोड़ा बहुत अगर याद रहता है तो अच्छी बात है, नहीं याद रहता तो मेन चीज़ यहाँ पे ये है, फर्स्ट जनरेशन के अंदर स्विचिंग डिवाइस कौन सा है, हमारा वैक्यूम ट्यूब है। उसके अंदर स्टोरेज कैसे होता है, मैग्नेटिक ड्रम के अंदर स्टोरेज होता है। ऑपरेटिंग डिवाइस कौन सा है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है फर्स्ट जनरेशन के अंदर, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब, मैग्नेटिक ड्रम और हमारा स्विचिंग वाला बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखना। सेकेंड जनरेशन के अंदर आ जाते हैं, फर्स्ट जनरेशन कहाँ पर यूज़ होता है, एनईएक हो गया, मार्क वन कहाँ पे था हमारा, वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे था, यूनिवैक था हमारा, यूनिवैक क्या था हमारा, फर्स्ट मैकेनिकल कुछ था ऐसे करके, जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, ठीक है। ये क्या है, इनमें सारा ये फर्स्ट जनरेशन वाले थे, इनके अंदर कौन सा जो है स्विचिंग डिवाइस यूज़ होता था, हमारा वैक्यूम ट्यूब यूज़ होता था। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम था इसके अंदर, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था। समझ आ रहा है ना कि अगर यहाँ से भी पूछे कि यूनिवैक के अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता था, तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता था, क्योंकि ये फर्स्ट जनरेशन वाला था, ओके। इसके बाद सेकंड जनरेशन के अंदर आ जाते हैं, सेकंड जनरेशन में जो स्विचिंग डिवाइस था वो कौन सा था, हमारा ट्रांजिस्टर था। वैक्यूम किस में था, फर्स्ट जनरेशन में था, सेकंड जनरेशन में हमारा ट्रांजिस्टर था। उसके बाद इसमें स्टोरेज डिवाइस कैसी थी, मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी यूज़ होती है स्टोरेज डिवाइस के लिए। मैग्नेटिक ड्रम था पुराने वाला फर्स्ट जनरेशन में, मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी एज अ स्टोरेज डिवाइस सेकंड जनरेशन में यूज़ होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें है टाइम शेकिंग या मल्टीटास्किंग वाला, ठीक है, बस इतना, ठीक है। इसके बाद ये मत याद रखो, यहाँ तक याद रखो बस। उसके बाद आते हैं हम थर्ड जनरेशन पे, ठीक है। थर्ड जनरेशन में जो स्विचिंग डिवाइस है वो कौन सा है, हमारा आईसी, इंटीग्रेटेड चिप। किससे बना हुआ होता है, इंटीग्रेटेड चिप हमारा सिलिकॉन से बना होता है। ट्रांजिस्टर हमारे सेमीकंडक्टर से बने होते हैं, ये मोरले सबको पता होगा, नहीं पता है तो चलो पता चल गया। ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर से बने होते हैं, आईसी सिलिकॉन से बना होता है, ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखना। थर्ड जनरेशन में स्विचिंग डिवाइस कौन सा था हमारा, आईसी था। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर था, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम था, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब। स्टोरेज डिवाइस कौन सा है हमारा, वही मैग्नेटिक कोर प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है, मतलब स्टोरेज डिवाइस में कोई जो यहाँ पे चेंज नहीं आया। सेकंड जनरेशन में मैग्नेटिक कोर था, थर्ड जनरेशन में स्टोरेज डिवाइस कौन सा हमारा, मैग्नेटिक कोर है। जो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है, रियल टाइम सिस्टम आ चुका है यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये जो हमारा कोबोल है, जो हमारा फोरटेन है, जो हमारा एलगोल है, ये क्या चीज़ है, ये है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, इसको याद रखना। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, नाम दे देगा और पूछेगा ये क्या चीज़ है, ये तो हमारा फोरटेन है, ये जो हमारा कोबोल है, ये हमारा एलगोल है, ये क्या चीज़ है, ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, थर्ड जनरेशन वाले, ये याद रहना है, लेकिन ये याद रहना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम है। फोरटेन किसका नाम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है कोबोल एलगोल, ठीक है। डाटा बेस मैनेजमेंट में थर्ड जनरेशन यूज़ होता है, ठीक है, चलो छोड़ो इसको, यहाँ तक आ गया, इसको रिकॉल भी करेंगे, चिंता मत करो। उसके बाद आ जाओ फोर्थ में, फोर्थ जनरेशन, इसमें स्विचिंग डिवाइस कौन सा है हमारा, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, नाम याद रखना है, ठीक है, तुम्हें नहीं पता चलेगा क्या चीज़ है, मुझे भी नहीं पता क्या चीज़ है, लेकिन नाम याद रखना है। लार्ज स्केल जो इंटीग्रेटेड है, ये फोर्थ जनरेशन के अंदर क्या था, स्विचिंग डिवाइस यूज़ हो रहा था, ठीक है। उसके बाद ये स्टोरेज डिवाइस के लिए क्या यूज़ करता है हमारा, सेमीकंडक्टर मेमोरी यूज़ करता है, या फिर विंचेस्टर डिस्क, विंचेस्टर, इसको थोड़ा सा देखते हैं क्या चीज़ है, नाम थोड़ा सा अलग सा लग रहा है, विन चेस्टर डिस्क, अरे ये जो हार्ड डिस्क होती है उसी को बोल रहे हैं ये, ये जो हमारी हार्ड डिस्क होती है उसका नाम है विनचेस्टर डिस्क, इसको थोड़ा सा याद रखना, हार्ड डिस्क का ही दूसरा नाम है विनचेस्टर डिस्क। और कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में आई थी ये? फोर्थ ऑपरेटिंग सिस्टम में आई थी, फोर्थ जनरेशन के अंदर। फोर्थ जनरेशन में स्टोरेज डिवाइस कौन सा यूज होता था? हार्ड डिस्क, विनचेस्टर डिस्क, ठीक है। थर्ड में कौन सा यूज होता था? हमारा माइक्रो मैग्नेटिक कोर। सेकंड में भी मैग्नेटिक कोर था, उससे पहले ड्रम करके कुछ था, मैग्नेटिक ड्रम था शायद, हाँ मैग्नेटिक ड्रम था, ठीक है, ये थोड़ा सा माइंड में बनाना पड़ेगा। फर्स्ट में कौन सा था बताओ? मैग्नेटिक ड्रम, ठीक है। सेकंड में मैग्नेटिक कोर, थर्ड के अंदर स्टोरेज डिवाइस कौन सा था? मैग्नेटिक कोर। फोर्थ के अंदर, फोर्थ जनरेशन के अंदर कौन सा था? हार्ड डिस्क वाला, HDD जिसे कहते हैं, ठीक है, जिसे विनचेस्टर डिस्क भी बोलते हैं, सेमीकंडक्टर वाला, ये था। ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग, GUI इंटरफेस, ये वाला थोड़ा याद रखना, पास्कल हो गया, कोबोल हो गया, फोर्टेन, वही दोबारा आ गए, फोर्थ थर्ड के अंदर सेम, मोर और लेस सेम है, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, ये क्या चीज़ है? ये है हमारा स्विचिंग डिवाइस, वैक्यूम एज अ स्विचिंग डिवाइस कौन से जनरेशन के अंदर यूज होता था, किसी को पता है? क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वेरी गुड रिचा, फर्स्ट के अंदर। मैग्नेटिक कोर एज अ स्टोरेज डिवाइस कौन सी जनरेशन के अंदर यूज होता था? वेरी गुड, थर्ड सेकंड दोनों ठीक है, थर्ड सेकंड दोनों ठीक है, ठीक है। अब आ जाओ ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, फर्स्ट जनरेशन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता था? वेरी गुड, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, यही था। उसके बाद वाले थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं, लेकिन उस पहला जरूर याद रख लेना, क्योंकि जहाँ पे तीन चार नाम आ जाएंगे ना वहाँ पे वो वैसे नहीं पूछता, जहाँ पे सिर्फ एक सिंगल नाम है वहाँ से पूछते हैं क्वेश्चन। हम यहाँ पे 10 ऑपरेटिंग सिस्टम दे रखे हैं, इसमें थोड़ा ना पूछेंगे, जहाँ पे सिर्फ एक सिंगल दे रखा है ना उसमें से पूछते हैं। लेकिन यहाँ से ये क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ऐसे करके आ जाएंगे। ये वाला याद रखना, जो हमारा फिफ्थ जनरेशन है इसमें जो स्विचिंग डिवाइस है वो है SLSI, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। इसमें स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन में ऑप्टिकल डिस्क आया था, विनचेस्टर डिस्क आई थी हमारी फोर्थ में। नॉलेज इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम था हमारे फिफ्थ में, ये अभी जो लेटेस्ट चल रहा है उसी का, AI वगैरह का, ये सारी चीज़ है, ये थोड़ा सा याद रखना। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम फिफ्थ और AI से रिलेटेड है, ठीक है, नॉलेज इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, ठीक है। अब इस आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इसको दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं जल्दी से। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम किस कौन से का फीचर है? हाँ हार्दिक, हो जाएगी, शाम तक अपलोड हो जाएगी सारी, चिंता मत करो, वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद हमारा था ट्रांजिस्टर कौन से उसके अंदर एज अ स्विचिंग डिवाइस यूज करते हैं हम? उत्कर्ष बोल रहा है फर्स्ट, एक नंबर कट गया उत्कर्ष का, सेकंड है, ठीक है। विनचेस्टर डिस्क किसको बोलते हैं? ठीक है, स्टोरेज कौन सी जनरेशन में था? फोर्थ में था। फिफ्थ जनरेशन का प्रोसेसिंग सिस्टम का नाम क्या था? ठीक है, हो गया, बस इतना बहुत है, नॉलेज इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टिटबिट्स, थोड़े छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन। सिद्धार्था हमारे बुद्धा के नाम पे रखा गया, हमारे फर्स्ट कंप्यूटर जो इंडिया के अंदर डेवलप किया गया, थोड़ा सा याद रखना, इंडिया का पहला कंप्यूटर सिद्धार्था। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोलते हैं? लंदन वाला, कौन सी मशीन थी उसकी? ठीक है, एनालिटिकल इंजन। उसमें क्या चीज़ वो थी, अलग क्या था उस, वो फर्स्ट क्या था? जनरल पर्पस था, मैकेनिकल नहीं था, जनरल पर्पस था पहला, चार्ल्स वाला, ठीक है। एलन टूरिंग, मॉडर्न कंप्यूटर का फादर है ये, ठीक है। पहला हमारा चार्ल्स बेबेज, उसके बाद मॉडर्न कंप्यूटर का एलन टूरिंग आ गया, ठीक है। उसके बाद आ गया न्यूमैन, ये आर्किटेक्ट है, न्यूमैन हमारा आर्किटेक्ट है कंप्यूटर का, ठीक है। ये भी फादर में भी इतने सारे फादर, ठीक है, कोई नहीं। चार्ल्स बेबेज, उसके बाद आया था हमारा कौन, टूरिंग, ये मॉडर्न वाला है, ठीक है। आर्किटेक्ट में हमारा कौन है, न्यूमैन, ऐसे करके थोड़ा सा याद रखना। ट्रांजिस्टर किसने इन्वेंट करा, बेल लैबोरेटोरी ने। ट्रांजिस्टर का इन्वेंटर कौन है, बेल लैबोरेटोरी। जॉन वैन न्यूमैन फर्स्ट आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर है। एलन टूरिंग हमारा फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर का फादर है, वैसे चार्ल्स बेबेज है। सिद्धार्था हमारी इंडिया का पहला कंप्यूटर है, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट आईसी का इन्वेंट, आईसी ट्रांजिस्टर, बेल लैबोरेटोरी, फर्स्ट आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे कहते हैं, उसका इन्वेंशन किसने किया, हमारा रॉबर्ट नॉइस ने, और किल्बी नॉइस, ऐसे करके याद रखना, पूरा नाम याद रखने की कभी ज़रूरत नहीं है। किल्बी और नॉइस ने इन्वेंट करा क्या, आईसी को। जो अभी लेटेस्ट कंप्यूटर आ रहे हैं उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है, इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम में डिफरेंस क्या था, इंस्ट्रक्शन क्या था, कमांड थी, ठीक है। तो ये जो कमांड है ये पैरेलल भी दे सकते हैं और सिक्वेंशियल भी दे सकते हैं, ठीक है। ऐसे पैरेलल भी दे सकते हैं, ऐसे सीक्वेंस में भी दे सकते हैं। जो अभी मॉडर्न कंप्यूटर आ रहे हैं उसके अंदर इंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये दो चीज़ याद रखना, ये थोड़ा ठीक है टिटबिट वाला। अब यहाँ तक थोड़ा सा, आप थोड़ा सा सांस ले लो लंबी लंबी, क्योंकि यहाँ तक सर भारी हो गया होगा तुम्हारा, मेरे को पता है। इसके बाद थोड़ा सा ही और है, बस थोड़ा सा ही है, 5 मिनट सांस ले लो, फिर उसके बाद हम यहाँ क्लासिफिकेशन से चालू करते हैं। अब इसके आगे कुछ है नहीं, मेन चीज़ यही रटने वाली थी, ठीक है। थोड़ा सा सोचो, अभी जो हमने पढ़ा है ना उसके बारे में थोड़ा सा सोचो, क्या क्या चीज़ें थी, एक बार रिकॉल करो। फिर इसके MCQs भी करेंगे हम। हाँ रेयान बोलो। नहीं 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 इसी का ये जो वीडियो होगी ना, इसी को तुम वो कर लेना, नहीं तो मैं, अगर किसी को चाहिए होगी तो बताना, मैं ही इसकी ऑडियो प्रोवाइड करा दूंगा। सिर्फ इसमें वो रहेगा जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, वो चीज़ें रहेगी जो मैं बोल रहा हूँ, वो चीज़ें वो बस सुननी है उसको, क्योंकि सिर्फ रटने वाला है ये सारा, ठीक है। मैं करवा दूँगा रिचा, ठीक है, मैं पोर्टल पे करवा दूँगा, ठीक है। हाँ क्योंकि सारा इसमें मतलब रॉ में तो मेरे पास ही रहता है, तो मैं करवा दूँगा, क्योंकि तुम फिर दोबारा उसको एक्सट्रैक्ट करोगे, फिर यूट्यूब पे जाओगे और फिर वो करोगे ये करोगे, मैं करवा दूँगा, चिंता मत करो। हाँ पोर्टल से डाउनलोड, पोर्टल से सब डाउनलोड हो जाता है, थोड़ा दिमाग वाला बंदा चाहिए, सब डाउनलोड होता है वहाँ से। वो देखना पड़ेगा, मतलब हाँ ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है, वैसे हो जाएगा। और बताओ, चलो आगे चलो, बातें करने लग गए। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, कोई क्लासिफिकेशन करने की हमें ज़रूरत नहीं है, यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं। तीन पे होती है, साइज़ हो गया, वर्क हो गया और पर्पस हो गया। हम बेसिक चीज़ देखते हैं जहाँ से क्वेश्चन आएगा। माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है, थोड़ा सा इसे ध्यान में रखना, कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। लीस्ट पावरफुल कंप्यूटर है जो हमारे पास होता है, जो घरों में होते हैं सारे लीस्ट, वही है माइक्रो कंप्यूटर है। लगता है ऐसा कि उसमें हम यूट्यूब भी चला रहे हैं, उसमें हम म्यूज़िक वो भी चला रहे हैं, उसमें हम गेम भी चला रहे हैं, लेकिन वो ऐसा जितना पावरफुल होता नहीं है। सारे, चाहे वो मेरे यहाँ पे स्टूडियो में रखा हुआ कंप्यूटर हो या बाहर मेरे घर पे रखा हुआ कंप्यूटर हो, सारे हमारे माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं, ठीक है। तीन इक्विपमेंट होते हैं, सिस्टम यूनिट होता है, इनपुट आउटपुट यूनिट और मेमोरी यूनिट, ठीक है, कोई बात नहीं। कौन कौन से आते हैं माइक्रो कंप्यूटर के अंदर, हमारा PC हो गया, सारे ही माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होते हैं। अल्ट्रा बुक हो गया, नोटबुक हो गया, लैपटॉप हो गया, सारे कौन है ये माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, बस इतना याद रखो। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या उसी वही चल रहा है, माइक्रो पाम टॉप, हैंड हेल्ड, टैबलेट कंप्यूटर, वर्क स्टेशन कंप्यूटर, सारे कौन है ये माइक्रो कंप्यूटर है, ठीक है, इसका थोड़ा नाम याद रखना, पाम टॉप हैंड हेल्ड, ठीक है। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट दे यूज, ये क्या चीज़ होती है, दे आर द स्मॉलेस्ट एंड डिज़ाइन टू फिट इन टू योर पाम, सो दे आर, ये देख लेते हैं इसको हम, पाम टॉप कंप्यूटर, ये दादाजी के ज़माने का पाम टॉप कंप्यूटर है, आजकल तो कोई यूज़ करता नहीं है इसे, लेकिन ये भी पर्सनल कंप्यूटर के अंदर आता था, ठीक है, देख लिया इसको, चलो ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर के अंदर वो कंप्यूटर आते हैं जो लीस्ट पावरफुल होते हैं, ठीक है, जैसे पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर जो हमारे घरों में होता है, लैपटॉप, अल्ट्राबुक, नोटबुक, पाम टॉप, ठीक है, पाम टॉप का नाम थोड़ा सा अच्छे से याद रखें हम, पाम टॉप हैंडहेल्ड, जो हाथ में पकड़ के जो बाबा आदम के ज़माने का जो कंप्यूटर होता था, एक तरह से आप कह सकते हैं जैसे आजकल मोबाइल है वैसे पाम टॉप होता था, ये भी माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आता है, ठीक है। उसके बाद हमारा टैबलेट्स हो गया जो अभी हम यूज़ करते हैं, और या फिर वर्क स्टेशन हो गया, ये वर्क स्टेशन भी हमारा किसके अंदर आता है, हमारा माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आता है, ठीक है, सबसे लीस्ट पावरफुल कंप्यूटर होते हैं हमारे माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है, इतना हमने देखा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं मिनी कंप्यूटर, माइक्रो और मिनी में थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, माइक्रो सबसे लीस्ट पावरफुल है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल है हमारा मिनी कंप्यूटर, जैसे जो इंजीनियर लोग यूज़ करते हैं ऑटो कैड वगैरह डिज़ाइन वगैरह के लिए जो यूज़ कंप्यूटर यूज़ करते हैं, वो कौन सा कंप्यूटर होता है, वो होता है मिनी कंप्यूटर, वो माइक्रो कंप्यूटर नहीं होता, वो होता है मिनी कंप्यूटर, जो इंजीनियर्स या ऑफिसेज के अंदर यूज़ किया जाता है इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए, कैड के लिए, वो कौन सा यूज़ होता है हमारा मिनी कंप्यूटर। सर्वर्स का नाम सुना होगा, सर्वर्स कौन सा कंप्यूटर होता है, सर्वर्स होता है मिनी कंप्यूटर, ठीक है, इसको याद रखना। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर में डिफरेंस है, जो माइक्रो कंप्यूटर है वो घर वाले कंप्यूटर है जो घरों में यूज़ होते हैं, जिसमें हमारा वर्क स्टेशन भी आता है, पाम हेल्ड भी आता है, पाम टॉप जिसे अभी देखा था। उसके बाद मिनी कंप्यूटर होता है जो माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल होता है, जो हमारे ऑफिसेज के अंदर इंजीनियरिंग या कैड के लिए यूज़ होता है। सर्वर हमने बहुत कॉमन नाम सुना है इसका, सर्वर भी क्या है हमारा मिनी कंप्यूटर है, ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखना। फिर आता है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है मिनी कंप्यूटर से और ज़्यादा पावरफुल होता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े ऑफिसेज जो होते हैं, जो जैसे बीपीओ वगैरह हो गया, बहुत बड़े बड़े ऑफिसेज होते हैं जो करोड़ों रुपए के होते हैं, अरबों वाले, वहाँ पे क्या होता है एक कंप्यूटर पे ही जो है 10 या 15 लोग या फिर उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे होते हैं। वो कौन से कंप्यूटर पे काम करते हैं, वो करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है। सर्वर के ऊपर भी होता है, लेकिन सर्वर हमारा किस में आता है, मिनी कंप्यूटर में, ना कि माइक्रो कंप्यूटर में या फिर मेन फ्रेम में, वो आता है किस में, मिनी में, ठीक है। मेन फ्रेम क्या होता है, मिनी से थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल। यूनिवैक, हमने नाम सुना था यूनिवैक, इसके इन्वेंटर कौन थे, कमेंट करके बताओ कौन थे इन्वेंटर, इसके इन्वेंटर यूनिवैक, क्या था यूनिवैक फर्स्ट, कुछ था, करो रिकॉल करो क्या चीज़ था, हाँ फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था हमारा यूनिवैक, और यूनिवैक जो था इन्वेंट किसने करा था, JPJW, मेरे को खुद याद नहीं आ रहा नाम, इतनी जल्दी याद नहीं होता, कोई नहीं, 2-3 बार रिकॉल करेंगे हो जाएगा, ऐसे ही होता है। इकार्ती और मैकाली, इकार्ट, हाँ ठीक है, ये किस में आता था हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर में, ठीक है। सबसे पावरफुल कंप्यूटर हमारा आता है सुपर कंप्यूटर, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर हमारा सबसे पावरफुल कंप्यूटर नहीं है, सबसे पावरफुल मोस्ट फास्टेस्ट मोस्ट एक्सपेंसिव जो कंप्यूटर है वो है हमारा सुपर कंप्यूटर, ना कि मेन फ्रेम कंप्यूटर, इसको थोड़ा सा याद रखना, कंफ्यूज मत होना। इसकी जो स्पीड है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी स्पीड जो है किस में नापी जाती है हमारी, फ्लॉप्स में नापी जाती है। फ्लॉप्स वैसे तो फिल्म फ्लॉप्स हो जाती है, लेकिन सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड है वो भी फ्लॉप्स में नापी जाती है। फ्लॉप्स की फुल फॉर्म क्या होती है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। फ्लॉप्स की फुल फॉर्म क्या होती है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड, ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। सुपर कंप्यूटर की स्पीड फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, ये हो गए हमारे कंप्यूटर। और ये जो सुपर कंप्यूटर है ये हमारा वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज़ होता है, हमने देखा था ये यूनिवैक वगैरह ऐसे टाइप के भी यूज़ हो रहे थे। साइंटिफिक सर्वर स्टेशन कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर में डिफरेंस क्या है, पावर का डिफरेंस होगा, अगर इसके अंदर थोड़ा वो ज़्यादा पावरफुल होगा वो थोड़ा कम पावरफुल होगा, इससे ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होगा। मोर ऑर लेस वो ज़्यादा फास्ट टास्क कर पाएगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टास्क कर पाएगा, वो थोड़ा कम कर पाएगा, यही डिफरेंस रहता है कंप्यूटर में। कुछ स्लो चलते हैं कुछ फास्ट चलते हैं, वही रहेगा यहाँ पे, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। बाकी टास्क के ऊपर है, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टास्क कर पाएगा। जैसे हमारा सुपर कंप्यूटर वेदर फोरकास्टिंग कर सकता है, मतलब क्या, हमारे IMD वालों के पास कौन सा कंप्यूटर होगा, ये तो जनरल सेंस हो गया, हमारे IMD वालों के पास सुपर कंप्यूटर होगा, क्योंकि सुपर कंप्यूटर क्या करता है, वेदर फोरकास्टिंग करता है। ठीक है, हमारे इसरो के पास कौन सा कंप्यूटर होगा, सुपर कंप्यूटर होगा, क्यों, क्योंकि वो क्या करता है, साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज़ होता है, मिलिट्री एजेंसी, न्यूक्लियर बार्क के पास कौन सा कंप्यूटर होगा, हमारा सुपर कंप्यूटर होगा। ठीक है, वर्ल्ड का वर्किंग शायद सिंगल पर्सन यूज़ करते हैं, मेन फ्रेम मैनेजेस मल्टीपल पीसीज, हाँ ये भी कह सकते हो अनुज, दोनों चीज़ ठीक है। ये चीज़ वैसे क्वेश्चन में वो पूछेगा नहीं तो चिंता मत करो, इसलिए मैंने बोला था कि कंप्यूटर बनाना मत सीखना, सिर्फ कंप्यूटर के बारे में इंफॉर्मेशन को सीखना। ठीक है, जिज्ञासा अच्छी चीज़ है, लेकिन एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए इसको थोड़ा कंट्रोल भी करना पड़ता है, कहीं से कंप्यूटर मेन फ्रेम के बारे में सर्च मारने में एक घंटा निकाल दो और वहाँ से वो क्वेश्चन भी ना पूछे। ठीक है, तो पहला हमारा वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था, क्रेवन। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखना, क्रेवन हमारे वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था। इंडिया का कौन सा था, हमारा इंडिया का था परम, और फिर सिद्धार्थ क्या था, हमारा सिद्धार्थ था कंप्यूटर फर्स्ट। ठीक है, परम क्या है, सबसे फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, सिद्धार्थ था कंप्यूटर था, परम ईशान लेटेस्ट मशीन है, सीडेक ये 2016 का है, लेटेस्ट अभी देख लेते हैं, लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया, ये रहा हमारा, ये 2016 का, रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ याद रखो हमारा पहला इंडिया का पहला कौन सा कंप्यूटर था, हमारा पहला का था परम, वर्ल्ड का पहला क्रे, और अभी का लेटेस्ट कौन सा है हमारा, बाजीराम बोल रहा है ये तो झूठ बोलेगा नहीं। ठीक है, AI सुपर कंप्यूटर एरावत एंड परम सिद्धि, दोनों AI वाले ही हैं, तो इनका नाम याद रखो सिंपल, AIRA एरावत एंड परम सिद्धि, हमने देखा है कहाँ, मार्च 2025। ठीक है, ये अभी लेटेस्ट है हमारा सुपर कंप्यूटर एरावत एंड परम सिद्धि। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखना, उसके बाद वर्क पे थोड़ा सा बेस देख लेते हैं, यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन आने के चांसेस है इस वाले एरिए से, इससे पहले वाला से इस सच इतना ज़्यादा नहीं है। अब कंप्यूटर काम के बेस पे तीन तरह के होते हैं, एनालॉग डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग हो गया जिसके अंदर जो है, जैसे स्पीडोमीटर हो गया, स्पीड चलेगी तो वो थोड़ा सा फास्ट होगा, एनालॉग कंप्यूटर। सिस्मोग्राफ हो गया एनालॉग कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर हमारा जिस पे आप क्लासेस ले रहे हैं, काइंड ऑफ वो भी डिजिटल कंप्यूटर कंसीडर कर सकते हैं, या जिस पे मैं क्लासेस दे रहा हूँ वो डिजिटल कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर हो गया जो दोनों का मिक्सचर है, डिजिटल भी है थोड़ा सा एनालॉग भी है, जैसे हमारा ECG मशीन हो गई या डायलिसिस जो होती है, वो सारी चीज़ क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर है, दोनों का मिक्सचर। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखना एग्जाम्पल के साथ, एग्जाम्पल ही पूछेगा वैसे तो, ऐसे आपसे डेफिनेशन तो वो पूछेगा नहीं कि हाइब्रिड क्या होता है डिजिटल क्या होता है, लिखो वहाँ टिक करना है, इसमें से ऑप्शन दे देगा, उसके बाद बस वहाँ से आंसर करना है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना, इसके स्पीडोमीटर या फिर सिस्मोग्राफ जो है ये डिजिटल कंप्यूटर में नहीं आता, ये हाइब्रिड में नहीं आता, ये किस में आता है, एनालॉग कंप्यूटर में। ठीक है, वैसे ही हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर में ECG जो दोनों चीज़ मिक्स हो रही है, डायलिसिस, ये सारा हाइब्रिड में है। ठीक है, इसके बाद पर्पस के बेस्ड पे हमारा जनरल पर्पस कंप्यूटर होता है, जो हमने हमारा चार्ल्स बेबेज वाला स्मॉल अकाउंटिंग अकाउंटिंग ये सारी चीज़ें करता है। स्पेशल पर्पस होता है जो एयरक्राफ्टिंग लैंडिंग जो थोड़े से स्पेशल टास्क करता है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ो। क्वांटम कंप्यूटर, ये वाला थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। क्वांटम कंप्यूटर न्यूज़पेपर के अंदर आ रखा था, दो वर्ड हैं इसके अंदर, दो वर्ड्स को याद रखना क्योंकि ऐसे करके पूछता है कभी कभी कि ये जो दो वर्ड्स हैं कौन से कंप्यूटर से रिलेटेड है। एक है एंटेंगलमेंट, एक है सुपर इम्पोजिशन। सुपर ये जो क्वांटम कंप्यूटर है ये किसके ऊपर चलता है? वैसे बाकी जो कंप्यूटर होते हैं वो बिट्स के ऊपर चलता है, ये क्यू बिट्स पे चलता है। स्पेलिंग थोड़ा सा देखने ला कि मैं हमेशा स्पेलिंग मिस्टेक करता हूँ, बाकी तो सब चीज़ें ठीक है। क्यू बिट्स, हाँ ये क्यू बिट्स पे ही चलता है हमारा क्वांटम कंप्यूटर, इसको थोड़ा सा याद रखना ठीक है। ये थोड़ा सा न्यूज़पेपर में आता रहता है, ये तीनों वर्ड किससे रिलेटेड है इतना याद रखना। एंटेंगलमेंट, सुपर इम्पोजिशन एज सच क्या चीज़ होती है ये तुम्हारे मतलब की चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी चलो थोड़ा सा बता देता हूँ। सुपर इम्पोजिशन क्या होता है, देखो जीरो और वन के ऊपर सारी चीज़ चलती हैं, लेकिन सुपर इम्पोजिशन में क्या होता है कि यहाँ पे जीरो और वन दोनों में से आ सकता है ठीक है, दोनों आ सकते हैं एक साथ, बोथ भी आ सकते हैं ठीक है। वैसे जो नॉर्मल कंप्यूटर होते हैं वहाँ पे जीरो आएगा या वन आएगा, लेकिन बोथ नहीं आते। जो हमारा क्वांटम कंप्यूटर होता है उसमें बोथ भी आते हैं, मिलिट्री वगैरह के लिए बहुत यूज़फुल है क्वांटम कंप्यूटर, बहुत पावरफुल होता है। जो नॉर्मल वाले कंप्यूटर, ऐसा बोला भी जाता है जो नॉर्मल वाले जो कंप्यूटर हैं वो जो लेंगे 100-150 साल ये उसको मिनटों में कर देता है क्वांटम कंप्यूटर, इतना पावरफुल है ठीक है। फास्टेस्ट कंप्यूटर ब्रेन वर्किंग, यही फास्टेस्ट तो हो गए भाई जब इतना है तो ठीक है। ये दो वर्ड्स को याद रखना, बाकी भूलो तो भूलो, तीन वर्ड्स को, एंटेंगलमेंट, सुपर इम्पोजिशन और क्यूबिट्स ठीक है। क्यूबिट्स में वो जो बिट्स होता है ना जीरो और वन, क्वांटम कंप्यूटर में वो जीरो वन और बोथ होता है, क्यूबिट्स कहते हैं उसे ठीक है। क्वांटम कंप्यूटर सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने करा था, हमारे रिचर्ड फैमन ने। सबसे इट इज़ द फास्टेस्ट कंप्यूटर इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग, देख लो सबसे फास्ट कंप्यूटर है। ये स्टेटमेंट डायरेक्टली पूछ लेगा और पूछेगा किसके बारे में बात कर रहे हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या क्वांटम कंप्यूटर ठीक है। तो इस चीज़ से भी थोड़ा सा अवेयर रहना। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इज द फास्टेस्ट कंप्यूटर इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग, कौन सा है हमारा क्वांटम कंप्यूटर ठीक है। किसने बनाया सबसे पहले, रिचर्ड फ्रेमन ने। तीन वर्ड कौन से रिलेटेड है, एंटेंगलमेंट, सुपर इम्पोजिशन, क्यूबिट्स ठीक है। उसके बाद नैनो कंप्यूटर थोड़ा सा छोटा हो जाता है, क्रेडिट कार्ड के साइज का कंप्यूटर, प्रत्युष हमारे यहाँ का सुपर इंडियाज़ का फास्टेस्ट एंड रुको ये भी चेंज हो गया होगा, ये भी बहुत पुराना है, इंडिया का फास्टेस्ट यही होगा अभी तक सुपर कंप्यूटर जो नया बना है। प्रत्युष को कहाँ तक घिसते फिरेंगे हम, परमेशान था इंडिया फास्टेस्ट फर्स्ट मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर नेम्ड प्रत्युष, रुको इसको देखते हैं, इंडियाज फास्टेस्ट एंड फर्स्ट मल्टी पेटा फ्लॉप्स सुपर सॉरी सुपर कंप्यूटर, ये भाई प्रत्युष है अभी भी, इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर या फास्टेस्ट फर्स्ट मल्टी पेटाफ्लॉप, ये उसकी स्पीड नापते हैं ना, वो ऊपर देखा था ना फ्लॉप वाले में नापते हैं, प्रत्युष जो है ये मल्टी पेटाफ्लॉप में नापते हैं, सुपर कंप्यूटर है ठीक है। इंडिया का पहला कंप्यूटर कौन सा था, सिद्धार्थ। उसके बाद फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था, ठीक है। उसके बाद फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है इंडिया का, प्रत्युष ठीक है, वो क्रेवन वो था, वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ये जो है इंडिया का फास्टेस्ट है लेकिन वर्ल्ड में फोर्थ है, प्रोसेसिंग स्पीड पेटाफ्लॉप, फ्लॉप सुपर कंप्यूटर ठीक है, अटैच कर दो इसके साथ, फ्लॉप जहां पे आ गया सुपर कंप्यूटर फ्लॉप है ठीक है। ऐसे करके थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। एक बार इसको रिपीट करता हूँ, क्वांटम कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर फर्स्ट कंप्यूटर इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग कंप्यूटर है जो ब्रेन की वर्किंग को इमिटेट करता है। कौन? क्वांटम कंप्यूटर। तीन वर्ड्स इसके साथ रिलेटेड है, एंटेंगलमेंट, सुपर इम्पोजिशन, क्यूबिट्स। ठीक है, एंटेंगलमेंट बेसिकली बोलते हैं कि दो जगह पे एक जैसा टास्क करता है उसे एंटेंगलमेंट कहते हैं। बहुत बड़ी डेफिनेशन है, इसको छोड़ो। सुपर इन्फॉर्मेशन, सुपर इम्पोजिशन क्या होता है कि जीरो और वन दोनों एक साथ आ गए, सुपर इम्पोजिशन उसे कहते हैं। क्यूबिट्स, जीरो वन या बोथ उसको कहते हैं। ठीक है, ये तीनों वर्ड क्वांटम कंप्यूटर के साथ रिलेटेड है। उसके बाद प्रत्युष इंडिया का जो है फास्टेस्ट फर्स्ट मल्टी प्लेटफॉर्म ऑफ सुपर कंप्यूटर है। मल्टी प्लेटफॉर्म क्या है? इसकी स्पीड नापने वाली जो है स्पीड है, प्रोसेसिंग स्पीड है बेसिकली। इंडिया का फास्टेस्ट है प्रत्युष, लेकिन वर्ल्ड का नहीं है, वर्ल्ड का फोर्थ फास्टेस्ट है। वर्ल्ड का फास्टेस्ट भी देख लेते हैं, फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। एआई कैप्टन, वर्ल्ड में है एआई कैप्टन, बिल्ट बाय ठीक है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, यूएस का ही है। ठीक है, वर्ल्ड का फास्टेस्ट कौन सा है? एआई कैप्टन, कैप्टन नहीं है, कैप्टन है, यूएसए का है। ये हो गया हमारा कंप्यूटर के बारे में। थोड़ी सी और, एप्लीकेशंस कंप्यूटर सबको पता है किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, कोई इसे करने की ज़रूरत नहीं। बिजनेस वगैरह, एडवर्टीजमेंट, जो सारी चीज़ें चल रही हैं आप कंप्यूटर पर ही चल रही हैं, अलग से इसको क्या एक एक करके रटेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स में थोड़ा सा फ़र्क है, वो थोड़ा समझ लो। रोबोट्स वगैरह बनाते हैं वो रोबोटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रेन को इमिटेट करते हैं आर्टिफिशियली, वो आप सोचने की जो क्षमता है, जैसे चैट जीपीटी, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आता है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, बस इतना याद रखना। क्रिएशन ऑफ इंटेलिजेंट मशीन्स दैट वर्क रिएक्ट लाइक ह्यूमन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बाकी वो जो वर्क रोबोट होते हैं वो रोबोट्स होते हैं। ठीक है, चैट जीपीटी का नाम याद रखना इसके साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ और रोबोट्स के साथ। एक वो गई थी ना अंतरिक्ष में, इंडिया ने बनाई थी कोई रोबोट्स, क्या नाम था उसका, वो याद रख लेना। लिखा किसने? एक मिनट रुको, ये थी व्योमित्रा, हमारी जो रोबोट थी व्योमित्रा जो स्पेस में गई थी। ठीक है, इसका नाम थोड़ा सा याद रखना, गई नहीं थी, जाएगी गगनयान ह्यूमन जो स्पेस फ्लाइट है उसमें जाएगी शायद। इट इज़ डेवलप्ड स्पेस रोबोट इंक्लूडिंग ह्यूमनॉइड एज सक्सेसफुली डिप्लॉयड ऑपर इंस्ट्रक्शन, चली गई। चलो ठीक है, बस व्योमित्रा रोबोट है, चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इतना थोड़ा याद रखो। बस ये हो गया हमारा पहला चैप्टर। चलो अब 5 मिनट का ब्रेक, उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करेंगे इसके। ठीक है, थोड़ा सा रिकॉल कर लो माइंड में, एक बार रिकॉल कर लोगे उसके बाद एमसीक्यू सही होने चाहिए मैक्सिमम। ठीक है, 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट।